पुण्यभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्प्रसे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कंसायाथाह भगवान् नारदो देवदर्शनः। श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के 36वें अध्याय के इस 16वें श्लोक की चर्चा हम कल कर रहे थे, जिसमें कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया तो उस घटना के बाद जब श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर गए पुनः, उधर नारद जी कंस के दरबार में गए और उनसे कुछ कहने लगे। अब जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण को अद्भुत कर्मणा इन शब्दों से संबोधित करते हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण जो भी कर्म करते हैं वो अद्भुत होते हैं, अलौकिक होते हैं, दिव्य होते हैं, चमत्कार उत्पन्न करने वाले हमारे मन में ऐसे कार्य हो श्री कृष्ण के होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई असाधारण व्यक्ति भी नहीं है, वो तो साक्षात परम सत्य भगवान है। सदैव अपने दिव्य स्थिति में स्थित रहते हैं, कभी भी अपने स्थान से पतन नहीं होता है, इसलिए उनका नाम अच्युत भी है। वैसे भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुण हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि इन अनंत गुणों में से शास्त्रों में 64 ऐसे प्रमुख गुण चुने गए हैं और इनका उल्लेख श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं और बताते हैं कि ये सारे 64 गुण भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान हैं, समुद्र की भांति गहराई की तरह। जैसे समुद्र के पानी की गहराई का नाप लेना बहुत मुश्किल है, ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण में ये 64 गुण हैं, बहुत गहराई से कोई नाप तोल नहीं कर सकता भगवान के इन गुणों का, ये असंभव है। इंद्र, ब्रह्मा आदि और शिव आदि ऐसे महान भावों की बात तो दूर है, स्वयं अनंत शेष जो कि भगवान के अवतार हैं, वो भी भगवान के गुणों की गुणों का नाप तोल नहीं कर पाते हैं। इन 64 गुणों में से 50 गुण मात्र, और वो भी अणु मात्र में जीवों में रहते हैं, और वो भी कभी कभी प्रकट होते हैं, कभी कभी नहीं प्रकट होते हैं। जीवेश्वेते वसंतोपि बिंदु बिंदु तया क्वचित परिपूर्ण तया भाति तत्रैव पुरुषोत्तमे। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये सारे गुण जो हैं, 64 गुण, उनमें से 50 गुण जीव में रहते हैं, अर्थात जीवात्मा में। जीवेश्वेते वसंतोपि, तो जीव के अंदर ये 50 गुण भी निवास करते हैं, परंतु क्वचित, कभी कभी। ऐसा नहीं है कि हर एक जीव में हर समय ये गुण 50 गुण प्रकट होंगे। कभी कोई गुण प्रकट होता है तो कभी कोई और गुण प्रकट होता है, और कितनी मात्रा में, बिंदु बिंदु तया क्वचित, बहुत अणु मात्र में, परंतु भगवान में परिपूर्णतया भाति तत्रैव पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्णता में ये समस्त गुण विद्यमान रहते हैं। तो ये जीव और भगवान के बीच में अंतर है। अब इन 50 गुणों में से ऐसे कई गुण हैं, जैसे बलियान, अर्थात भगवान बहुत बलवान हैं। तो ऐसे देखा जाता है कि कई जीव भी थोड़ा बहुत बलवान होते हैं। अभी ओलंपिक खेलों में लोग अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने तेजी से हम दौड़ सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ हम मल्लयुद्ध कर सकते हैं, कुश्ती कर सकते हैं। तो ऐसे शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, तो ये भी बलियान है, बलवान है। परंतु मनुष्यों की शक्ति भगवान की तुलना से कितनी है? भगवान की बात तो दूर रही, केवल देवताओं की तुलना में मनुष्यों की शक्ति कितनी है, वो भी अणुमात्र है। ब्रह्मा जी जैसे देवता हैं, उनकी शक्ति इतनी अधिक है कि इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और उसके ऊपर रहे शिव जी, और उसके ऊपर रहे भगवान। तो यद्यपि जीवों में बल, ये बलियान, ये गुण रहता है, परंतु भगवान में जब ये गुण प्रकट होता है तो बहुत अद्भुत ढंग से प्रकट होता है। और एक गुण है ऐश्वर्य, समृद्धिमान। श्री कृष्ण पूर्ण तरह से समृद्धिमान है, ऐश्वर्यशाली है। तो इस दुनिया में देखा जाता है कि कई लोग ऐश्वर्यशाली हैं, परंतु ये ऐश्वर्य का गुण कब तक रहता है? क्वचित, बिंदु बिंदु तया क्वचित। इस जन्म में कोई अमीर है, हो सकता है पिछले जन्म में नहीं था, हो सकता है आने वाले जन्म में न हो, हो सकता है इस जन्म में भी एक समय अरबपति हो, अगले दिन बस सड़क पे आ जाए, ऐसी घटनाएं तो होती हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण सदैव समृद्धिमान रहते हैं, परिपूर्णता से उनमें ऐश्वर्य रहता है, सदैव रहता है। उसी तरह से सौंदर्य और जितने अनेक गुण हैं जिनका वर्णन इन 50 गुणों में आता है वो जीवों में बिंदु बिंदु तया क्वचित, बस बहुत कम मात्रा में रहता है, भगवान में परिपूर्णता में रहता है। जीवों के आगे रहे महादेव अर्थात शिव जी, अथा पंचगुण स्याद अंशेन गिरीशादिशु। गिरीश मतलब शिव जी, शिव जी का स्थान विशेष है, ये जीवात्मा और भगवान के बीच का स्थान है। न ये ठीक से भगवान हम उनको कह सकते हैं, न उनको हम जीवात्मा कह सकते हैं, उनका एक विशेष ही स्थान है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शिव जी के भी ये 50 गुण हैं, परंतु शिव जी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में है जीवों की तुलना में। तो यदि जीव जीवों के अंदर बल सौंदर्य ऐश्वर्य आदि ये सब गुण हैं, तो शिव जी के अंदर और भी अधिक मात्रा में है, अद्भुत मात्रा में है। इसके अलावा शिव जी के अंदर और भी 5 गुण हैं जो कि जीवों में नहीं है। सदा स्वरूप संप्राप्त सर्वज्ञ नित्य नूतन सच्चिदानंद सांद्रांग सर्व सिद्धि निषेवित। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सदा स्वरूप संप्राप्त कि शिव जी अपने स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं। तीसरी बात नित्य नूतन, वो सदैव युव अवस्था में रहते हैं। जिस तरह से हम कृष्ण को बुढ़ापे में कभी नहीं देखते हैं, शिव जी को भी बुढ़ापे में नहीं देखते कभी। शिव जी के अनेक तस्वीर आपने देखे होंगे, कभी ऐसा तस्वीर देखा है आपने शिव जी का जिनके बाल सफेद हो गए हैं, वो बूढ़े हो गए हैं? शिव जी भी युव अवस्था में ही हमेशा रहते हैं। सर्वज्ञ नित्य नूतन सच्चिदानंद सांद्रांग, उनका शरीर भी सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक शरीर है। सर्व सिद्धि निषेवित, समस्त सिद्धियों से युक्त हैं शिव जी। परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अंशेन, पूर्णतया केवल भगवान में है। ये समस्त अधिक जो 5 गुण शिव जी में हैं, वो भी अंश मात्र में है भगवान की तुलना में। जीवों की तुलना में सो अवश्य बहुत अधिक है, परंतु भगवान की तुलना में कम है। तो जब शिव जी कोई कार्य करते हैं तो वो बहुत अद्भुत होते हैं मनुष्यों की तुलना में। जब ऐसा कोई ऐश्वर्य मनुष्यों में प्रकट होता है तो अन्य मनुष्यों की तुलना में वो अद्भुत कार्य कहलाता है। जैसे क्योंकि ओलंपिक खेल चल रहे हैं इसलिए ये भी संदर्भ है, तो और उदाहरण दे दें। जब कोई बहुत ही अद्भुत कार्य कर दिखाता है, विशेष स्वर्ण पदक जीतता है और बहुत कम समय में उतने ही तेज गति से भागता है, तो लोग कहते कितना अद्भुत कार्य कर दिखाया इसने, 50 सालों में इतनी तेजी से कोई नहीं भागा है, आज तक इतिहास में ऐसे शायद कोई नहीं भागा है। तो साधारण मनुष्यों के दृष्टिकोण से यह अद्भुत कार्य है, परंतु देवताओं के कार्य इससे भी और अद्भुत। शिव जी का कार्य देवताओं से भी बहुत अद्भुत। तो जो भी कार्य मनुष्य कर सकते हैं, जिसके द्वारा अन्यों के मन में चमत्कार की भावना उत्पन्न होती है, उससे कहीं अधिक अद्भुत रूप से देवतागण और उनसे आगे चल के शिव जी ये कर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ये शक्ति है, उनमें ऐसे ही गुण हैं। तो शिव जी में ऐसे 55 गुण हैं। आगे चल के नारायण भगवान है, भगवान विष्णु, जो कि स्वयं भगवान है अवश्य, परंतु नारायण भगवान और श्री कृष्ण में भी रस का अंतर है। नारायण भगवान ऐसे, इनके अंदर 60 गुण परिपूर्णता में होते हैं अवश्य, क्योंकि वो तो भगवान है। तो शिव जी के अंदर जितने 55 गुण हैं वो भगवान में परिपूर्णता में हैं, साथ साथ भगवान नारायण में भी पांच गुण अधिक हैं जो कि शिव जी में भी नहीं पाए जाते। जो 55 गुण हैं शिव जी के अंदर, जिनके द्वारा वो अद्भुत से अद्भुत कार्य कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने विष के सागर का पान किया, एक बूंद में उसे बनाकर अपने कंठ में धारण किया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ है। तो शिव जी ऐसे अद्भुत से अद्भुत कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे 55 गुणों के द्वारा जो शिव जी अद्भुत कार्य करते हैं, उससे भी अधिक अद्भुत कार्य भगवान नारायण प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये 55 गुण परिपूर्णता में हैं, शिव जी में अंश मात्र में हैं भगवान की तुलना में, और नारायण भगवान में 5 गुण अधिक हैं। अविचिन्त्य महाशक्ति, ये एक गुण है, उनकी शक्ति अपार है, शिव जी से भी कहीं अधिक उनकी शक्ति है। भगवान की शक्ति से कोई तुलना नहीं कर सकता, कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता। कोटि ब्रह्मांड विग्रह, महाविष्णु के रोम छिद्रों से कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोटि ब्रह्मांड विग्रह। साथ साथ में ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान श्री नारायण इनके माध्यम से अनेक अवतार प्रकट होते हैं, विशेष करके क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के बीज हैं, फिर भी भौतिक सृष्टि में प्रकट होते समय ये विष्णु भगवान के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसलिए जो एक धारणा जो प्रचलित है समाज में कि कृष्ण विष्णु से आते हैं, समस्त अवतार विष्णु से आते हैं, इस दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत नहीं है, परंतु ये दृष्टिकोण सीमित है। जब हम इस भौतिक सृष्टि के दृष्टिकोण से समझते हैं तो फिर ये सही है कि भगवान विष्णु के माध्यम से समस्त अवतार, यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी अवतीर्ण होते हैं। परंतु जब हम भौतिक सृष्टि के परे जाते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम जानते हैं कि भगवान नारायण के भी उद्गम अंततः श्री कृष्ण हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं नारायण भगवान में एक और गुण है, अवतारावली बीजम, कि समस्त अवतार उनसे प्रकट होते हैं, ये तीसरा गुण उनका है। चौथा है हतारी गतिदायक, जब वो अपने शत्रुओं को, अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को शत्रु मानते हैं श्री कृष्ण का, उनकी हत्या करते हैं तो वास्तव में उनका उद्धार करते हैं, ऐसे गति प्रदान करते हैं, गतिदायक है जो इस भौतिक सृष्टि से परे है। कम से कम एक श्रेष्ठ गति इस भौतिक सृष्टि में तो प्रदान करते हैं, किसी उच्च लोक की प्राप्ति इस भौतिक सृष्टि में हो, या तो फिर कभी निराकार ब्रह्म में भी उनको स्थान दे सकते हैं भगवान। और पांचवा गुण है आत्मा राम गणाकर्षी, कि जो आत्मा राम पुरुष होते हैं, जो आत्म साक्षात्कारी होते हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं, भौतिक संसार में रमण बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को भी अपने दिव्य गुणों के द्वारा आकर्षित करने वाले हैं श्री भगवान नारायण। तो ये पांच अधिक गुण भगवान नारायण में पाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि न केवल भगवान शिव जी हैं जो कि अद्भुत से अद्भुत कार्य संपन्न करने में सक्षम हैं, उन्हीं कार्यों को भगवान नारायण और भी अद्भुतता से प्रदर्शित कर सकते हैं, साथ साथ ऐसे भी अद्भुत कार्य भगवान नारायण कर सकते हैं जो शिव जी नहीं कर सकते। तो देखिए अद्भुत कर्म करने की श्रृंखला कैसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और अंततः हम कहां तक पहुंचते हैं, अद्भुत कर्म करने की सीमा कहां है, कृष्ण में। और वो भी सीमा नहीं है, भगवान के जो क्षमता है अद्भुत कार्य करने की वो भी असीमित है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर अवश्य भगवान नारायण में रहने वाले 60 गुण हैं ही हैं, परंतु भगवान नारायण जो अद्भुत कर्म करते हैं इन 60 गुणों के कारण, उनसे भी अद्भुत कर्म भगवान श्री कृष्ण करते हैं, क्योंकि ये 60 गुण उनमें और भी गहराई में उपस्थित हैं। साथ साथ भगवान श्री कृष्ण में और 4 गुण हैं जो कि भगवान नारायण में भी उपस्थित नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। तो भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे सागर हैं, दिव्य सागर हैं, जो कि अनेक लीला रूपी तरंगों से भरा हुआ है। लीला कल्लोल वारिधि, वारिधि अर्थात सागर, कल्लोल अर्थात तरंग, लहर। तो भगवान एक ऐसे वारिधि या समुद्र हैं जिसमें कि अनंत लीला रूपी लहरें बह रही हैं। और जब महाप्रभु कहते हैं सर्वाद्भुत चमत्कार, ऐसे लीलाओं के द्वारा सारे सृष्टि में, आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि में, वो सबके मन में चमत्कार की भावना उत्पन्न करते हैं। सर्व अद्भुत, भले भगवान नारायण के कार्य भी शिव जी की तुलना में अद्भुत हो, शिव जी के कार्य देवताओं की तुलना में अद्भुत हो, देवताओं के कार्य मनुष्यों की तुलना में अद्भुत हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण के कर्म सर्वाद्भुत चमत्कार, सबसे अद्भुत भगवान श्री कृष्ण के कार्य होते हैं। तो ये भगवान का पहला गुण है जो कि नारायण में भी नहीं है, और ये है लीला माधुरी। वो बहुत सुंदर सुंदर दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो ये भगवान की जो लीलाएं होती हैं वास्तव में अद्भुत होती हैं। जैसे भगवान होने के बाद भी भगवान माखन चोरी करते हैं, एक साधारण बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, बादल के गरजने पर डर के मारे अपने माता यशोदा की गोदी में भाग जाते हैं, शरण ग्रहण करते हैं। ऐसे भगवान नारायण नहीं करते। कभी नरसिंह देव करते ऐसे? कभी नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इतने मधुर मानी जाती हैं, इतने मीठे, इसलिए तो चमत्कार उत्पन्न होता है। साधारण बच्चा जब ऐसे भागता है फिर भी लोग वाह वाह करते हैं, कितना मधुर है, कितना मधुर है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन स्वयं भगवान जो कि इतने शक्तिशाली है, षड ऐश्वर्यों से संपन्न है, 64 गुणों से युक्त है परिपूर्णता में, वो जब ऐसे कोई कार्य करते हैं तो कितना अद्भुत है ये, सर्वाद्भुत चमत्कार। साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण फिर गायों को चराने जाते हैं और वहाँ पक्षियों की, पशुओं की नकल करते हैं। जैसे मेंढक कूदते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसी तरह से श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में खेलते थे, मेंढकों के पीछे पीछे उनकी तरह नकल करके कूदते कूदते कभी सरोवर में कूद जाते थे। ये कोई भगवान के कार्य है? ऐसे कोई सोच सकता है? या भगवान श्री कृष्ण अनंत गोपियों के साथ में, अनगिनत गोपियों के साथ में रासलीला करते हैं बीच रात में, ऐसे भी भगवान नारायण नहीं करते। एक साथ में अपने आप को विस्तार करके प्रत्येक गोपी को प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण केवल मेरे साथ में है। यह अद्भुत कार्य है। जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ यमुना के तट पे बैठ के भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं तो हर एक ग्वाल बाल को ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण मेरे ही ओर देख रहे हैं। तो ऐसे वृंदावन की लीलाएं श्री कृष्ण की अद्भुत से अद्भुत है। इसलिए महाप्रभु ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, लीला माधुरी। ये पहला गुण है और इस गुण के अनुसार जो भगवान कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वाकई बहुत ही अद्भुत होते हैं। दूसरा गुण, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रियमंडल। और भगवान के समस्त लीलाओं में से सर्वश्रेष्ठ भगवान की जो लीलाएं हैं वो मधुर रस में है, माधुर्य रस में है, गोपियों के साथ में। यद्यपि भगवान की जो गोपियों के साथ में लीलाएं हैं, अज्ञानी लोग इनको गलत समझते हैं, निंदा करते हैं, परंतु जो वास्तव में तत्व ज्ञानी हैं, शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण तत्व से भलीभांति परिचित हैं, वो इन लीलाओं को पूजते हैं, इन लीलाओं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबसे मधुर मानते हैं। इसलिए इस रस को माधुर्य रस कहा गया है, सबसे मधुर रस। यद्यपि भगवान की प्रत्येक लीला या प्रत्येक रस वृंदावन में मधुर है, फिर भी ये श्रृंगार रस सबसे मधुर माना जाता है। अतुल्य प्रेम, तो ये ऐसा प्रेम जो यहां पाया जाता है, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित, तो वो मंडित हैं ऐसे भक्तों के, भक्तों से घिरे हुए हैं प्रिय मंडल, जो कि ऐसे माधुरी रस में उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम माधुरी, ये दूसरा लक्षण है भगवान का। भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रेम का आदान प्रदान करते समय ऐसे डांट भी खा लेते हैं, गोपियों से डांट स्वीकार करते हैं, श्रीमती राधा रानी से डांट स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी श्रीमती राधा रानी क्रोध में उनके पास में नहीं आते हैं तो श्री कृष्ण बड़े बेचैन हो जाते हैं। वो श्री कृष्ण जिनके ऊपर ध्यान करके व्यक्ति अपनी बेचैनी को खो बैठता है और बड़े सुकून और चैन का अनुभव करता है, तो वो भगवान अब बेचैन हो जाते हैं जबकि श्रीमती राधा रानी उन पे क्रोधित हो जाती हैं। व्रज मंडल में बरसाना एक जगह है जो श्रीमती राधा रानी का स्थान है, वहां मान मंदिर है जहां ऐसे श्रीमती राधा रानी की मान लीलाएं हुई थी। भगवान श्री कृष्ण डर डर के आते हैं उनके पास, तो ये चमत्कार और अद्भुत कार्य नहीं है तो क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, सर्वशक्तिमान, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भगवान श्री कृष्ण इस तरह से इस माधुर्य रस के आनंद का स्वाद लेते हैं, अद्भुत कर्मणा। तो ये प्रेम माधुर्य के कारण भी हम देख सकते हैं भगवान के कर्म बड़े अद्भुत से अद्भुत होते हैं। तीसरी बात महाप्रभु कहते हैं, त्रिजगन मनसाकर्षि मुरली कलकूजितः। मुरली कलकूजितः, अपनी मुरली के मधुर ध्वनि से भगवान त्रिजगन मनसाकर्षि, तीनों भुवनों के, भूभुवस्वः, तीनों भुवनों के जितने भी लोग हैं उन सब के मन को आकर्षित कर देते हैं। वेणु माधुरी, भगवान जब वेणु बजाते हैं तो शिवजी भी अपने अपने ध्यान में स्थित नहीं रह पाते, उनका ध्यान भंग हो जाता है। वो डमरू बजाते रहते हैं, कभी कभी डमरू बजाना बंद कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। चतुष्कुमार भी इधर उधर देखते हैं, उनका ध्यान भंग हो जाता है, ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हो जाता है। और देवलोक में भी चर्चा चलती है कि ये कौन सा संगीत है, ऐसे राग तो हमें कभी सुने नहीं हैं। और जो प्रभाव भगवान श्री कृष्ण के वेणु का होता है तीनों जगतों के ऊपर, यहां तक कि सारे आध्यात्मिक जगत पर भी, इसका वर्णन संक्षिप्त रूप में सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में इधर उधर देते हैं, विशेष करके दशम स्कंद के 21वें अध्याय में, जिसे वेणु गीत कहते हैं। तो भगवान का वेणु वादन अवश्य बहुत चमत्कार का कार्य है। भगवान ऐसे वेणु बजाते हैं कि जिससे सब लोग मोहित हो जाते हैं। और चौथी जो विशेष बात है भगवान श्री कृष्ण में, जो कि भगवान नारायण में भी नहीं है, वो है असमूर्ध्व रूप श्री विस्मापित चराचर। असमूर्ध्व रूप श्री, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप, और श्री अर्थात ऐश्वर्य। भगवान श्री कृष्ण का रूप इतना सुंदर है और उनका ऐश्वर्य भी ऐसा आकर्षक है, असमान ऊर्ध्व है, न किसी का सौंदर्य और ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण के समान हो सकता है, न उससे अधिक हो सकता है। अधिक होने की बात दूर है, समान भी नहीं हो सकता। ये असमान ऊर्ध्व शब्द का तात्पर्य है। तो ये है रूप माधुरी, भगवान के सौंदर्य की माधुरी। तो भगवान का सौंदर्य भी बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। तो भगवान के सौंदर्य के कारण सारा जगत आकर्षित होता है। विस्मापित चराचर, चर अचर प्राणी दोनों विस्मित हो जाते हैं भगवान के सौंदर्य का दर्शन करके। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कार्य कितने अद्भुत होते हैं। उनके कार्य अद्भुत क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर ये 64 गुण परिपूर्णता में, अद्भुतता से प्रकट हैं, विद्यमान हैं। तो यहां जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण अद्भुत कर्मणा हैं, कि अद्भुत कर्म करने वाले हैं, तो अद्भुत कर्मणा इस भगवान के नाम का तात्पर्य हमने देने का प्रयास किया है। थोड़ी सी व्याख्या की, कल भी थोड़ा बहुत किया था और इसी चर्चा को आज भी हमने जारी रखा, ताकि हम जान लें कि भगवान श्री कृष्ण जो हमारे आराध्य देव हैं, वो वास्तव में कौन हैं, हमारे लिए क्यों इतने आदरणीय हैं, क्यों हमारे लिए इतने वो आदर और प्रेम के स्रोत हैं, विषय हैं हमारे लिए। और आगे चल के सुखदेव गोस्वामी फिर नारद जी की बात करते हैं और नारद जी का संबोधन करके कहते हैं, वो देव दर्शन है, नारदो देव दर्शन है। तो नारद जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये तो हम सबको पता है। सब जगह ब्रह्मांड भर में घूमते हैं, यहां तक कि वैकुंठ में भी आसानी से चले जाते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। भले चतुष्कुमारों को भी एक बार कहीं रोका गया था वैकुंठ के द्वार में, परंतु नारद जी को कोई नहीं रोकता। वो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, भक्ति का प्रचार सारे ब्रह्मांड में करते हैं। तो शुद्ध भक्त होने के कारण उनकी दृष्टि दिव्य है, इसलिए देव दर्शन शब्द का पहला तात्पर्य है कि उनकी दृष्टि दिव्य है। त्रिकालज्ञ भी हैं वो, भूत वर्तमान भविष्य तीनों को भले भांति जानते हैं। उनका शरीर बिल्कुल आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, और अपनी वीणा बजाते बजाते वो भ्रमण करते रहते हैं, भगवान का गुणगान करते रहते हैं। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं कि अपनी वीणा बजाते बजाते नारद मुनि ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते हैं, राधिका रमण का नाम का गुणगान करते रहते हैं। तो इसलिए उनकी दृष्टि दिव्य है। नारद मुनि जब श्राप भी देते हैं किसी को, तो उनकी दृष्टि दिव्य होने के कारण कृपा से भरी हुई होती है, प्रेम से भरी हुई होती है। इसलिए जिसके ऊपर वो श्राप देते हैं, जिसको वो श्रापित करते हैं, उस व्यक्ति का भला होता है, और इस तरह से भला होता है कि उसके जीवन में भाग्य ऐसे खुल जाता है, मानो छप्पर फाड़ के उसके भाग्य खुल जाते हैं, जैसे नलकूवर मणिग्रीव के साथ में हुआ। ऐसे निम्न श्रेणी के कार्य वो कर रहे थे, नग्न अवस्था में थोड़े स्त्रियों के साथ में थे, रमण कर रहे थे एक स्थान में, नारद जी वहां से गए, फिर भी उनको ये ठीक नहीं, उनको ये ऐसे नहीं लगा कि हमें वस्त्र पहनने चाहिए, नारद जी जैसे भक्त हैं उनको सम्मान करना चाहिए, जैसे थे वैसे ही पड़े रहे। तो नारद जी ने बड़ी कृपा की उनके ऊपर, सोचा कि ये तो इनके लिए अच्छा नहीं है, ये ऐसे नग्न अवस्था में रहना चाहते हैं, तो ठीक है मैं श्राप देता हूं कि तुम पेड़ बन जाओ, क्योंकि पेड़ तो कपड़े नहीं पहनते। निर्वस्त्र अवस्था में रहते हैं, देखिए बारिश हो रही तो बेचारे पेड़ खड़े हैं, हम तो छाता वगैरह लेकर जा सकते हैं, पेड़ों के पास न तो कोई छाता है न कुछ। जब ठंडी होती है हम तो कंबल के नीचे रहते हैं, लेकिन वो बेचारे बाहर वैसे के वैसे रहते हैं। गर्मी में हम पंखा वगैरह चालू करके बैठते हैं तो वो तो वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। तो निर्वस्त्र अवस्था में खड़े रहते हैं, तो उनको, क्योंकि नल कुंवर भी निर्वस्त्र अवस्था में थे, नग्न अवस्था में थे, तो नारद जी ने ऐसे श्राप दिया। तब उनके होश ठिकाने आ गए कि अरे हमने क्या किया और नारद जी ने किस तरह का श्राप हमें दे दिया। तब क्षमा याचना करने लगे नारद जी के चरणों में, तो नारद जी ने कृपा करके कहा कोई बात नहीं, आगे चल के स्वयं भगवान आएंगे और तुम दोनों का उद्धार करेंगे। और अनेक अनेक वर्षों तक वो अर्जुन वृक्ष के रूप में नंद महाराज के आंगन में खड़े रहे, उस स्थान में जहां आगे चल के नंद महाराज का घर होना था। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कृपा की, ऐसी लीला की, जब माता यशोदा ने उनको उखल से बांध दिया, उस उखल को खींचते खींचते उन दोनों पेड़ों को उन्होंने गिरा दिया और नल कुंवर और मणिग्रीव को उन दोनों उस पेड़ योनि से मुक्त कर दिया। वो बाहर प्रकट हुए अपने तेजस्वी स्वर्गीय शरीर में, करबद्ध रूप से भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे, क्षमा याचना करने लगे, अपना आभार व्यक्त करने लगे। अन्य ग्वाल बाल सारे देख रहे थे परंतु उनको समझ में नहीं आया, उन वो क्या जानते हैं कि ये सब कौन है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको वापस उनके जगह धाम में भेज दिया और उनकी प्रार्थना के अनुसार उन्हें प्रेमा भक्ति भी प्रदान कर दी। तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ, हम पूछ रहे हैं केवल प्रेम भक्ति के लिए आपके चरणों में है कृष्ण, उनकी प्रार्थना थी इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रदान कर दी। वो उपहार, वो भेंट भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिया जो बिरला ही भगवान किसी को देते हैं, जो बहुत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण को किसी को कोई भौतिक चीज तुरंत दे सकते हैं, मोक्ष भी दे सकते हैं, परंतु प्रेमा भक्ति बहुत कम देते हैं। और ये सर्वोच्च भेंट भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों व्यक्तियों को दिया जो कि ऐसे जघन्य कार्य कर रहे थे। और ऐसा क्यों हुआ? नारद जी की कृपा से, क्योंकि नारद जी की दृष्टि कैसी थी? कृपा की दृष्टि थी, प्रेम की दृष्टि। जब संसार में कोई एक दूसरे के ऊपर श्राप देता है तो हृदय में कोई घृणा भरा हुआ होता है, क्रोध भरा हुआ होता है, ईर्ष्या भरी हुई होती है। तो साधारण श्राप जो एक दूसरे के ऊपर लोग श्राप देते हैं संसार में, उसके पीछे ऐसी भावना रहती है क्योंकि इन लोगों की दृष्टि दिव्य नहीं है, उनकी तो भौतिक दृष्टि है। भौतिक दृष्टि अर्थात जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से युक्त है, और दिव्य दृष्टि अर्थात वो दृष्टि जो कि प्रेम करुणा आदि से युक्त है। तो देव दर्शन शब्द का पहला अर्थ है कि जिनकी दृष्टि दिव्य है। देव का दूसरा शब्द अर्थ होता है भगवान। देव दर्शन का फिर ये दूसरा अर्थ होता है कि नारद जी भगवान का दर्शन करने में योग्य हैं। जब चाहे वो वैकुंठ जा सकते हैं, भगवान के आमने सामने उनसे बात कर सकते हैं, तो ये नारद जी का स्थान है। आमने सामने भगवान का दर्शन जब चाहे तब कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में वर्णन है कि अपने पिछले जन्म में नारद जी एक दासी पुत्र थे। स्वयं नारद जी व्यासदेव जी को यह वर्णन करते हैं, और किसी कारणवश उनकी मां का देहांत हो गया और इस दुनिया में वो अकेले पड़ गए। कुछ समय पहले उनके घर में अनेक साधु आए थे चातुर्मास्य के समय, वहां रुके थे। इनके बीच में जाकर ये बच्चा उनकी कथाएं सुनता था, उनकी सेवा बड़े निष्कपट भाव से करता था और उनका एक बार उनकी अनुमति से उनका उच्चिष्ट भी ग्रहण किया। तो उनकी इन सब भक्ति वेदांतों की कृपा से इस बच्चे का हृदय निर्मल हुआ और जब माँ का देहांत हो गया और कोई उनका सहारा इस भौतिक सृष्टि में नहीं था तो ये बच्चा अपने घर छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के चल पड़ा दुनिया में घूमने के लिए, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रख के भगवान का आश्रय ग्रहण कर दिया इस बच्चे ने। और चलते चलते अनेक गांव में से गुजर के गया, गोचर भूमियों में से, वनों में से, शहरों में से, अंततः एक जगह आके ध्यान में बैठ गया ये बच्चा। ध्यान करते करते जब अंतःकरण में भगवान प्रकट हुए थे तो वही भगवान, उनकी आवाज आई और उनकी आंखें खुलें और सामने उस बालक ने भगवान का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात दर्शन किया। भाव विभोर हो गया ये बच्चा, परंतु तुरंत भगवान अदृश्य हो गए और ये बच्चा बहुत ही विचलित हो गया, व्याकुलता में बहुत प्रयास करने लगा कि मैं फिर से उस तरह से ध्यान में बैठूं जैसे मैं पहले बैठा था ताकि पुनः भगवान मुझे दर्शन देंगे। क्योंकि जिस आनंद का अनुभव उस बच्चे को हुआ उस समय, वो ऐसा आनंद कभी भी इस बच्चे ने अनुभव नहीं किया था पहले। परंतु जितना भी प्रयास ये बालक क्यों ना करे, ऐसे बैठने से, वैसे बैठने से, वैसे ध्यान करने से, परंतु भगवान आए नहीं उनके सामने। अंततः भगवान की वाणी आई अवश्य और भगवान ने कहा कि हे बालक, अब इस जीवन में मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तुम्हारे अंदर जितने भी थोड़े बहुत कलमश हैं वो सब अब स्वच्छ हो जाएंगे, क्योंकि तुम तरसते रहोगे मेरे दर्शन के लिए। जिस दर्शन को तुमने प्राप्त किया थोड़े समय पहले, उस दर्शन के लिए तुम इस तरह से लालायित होते रहोगे कि ऐसी जो उत्कंठा तुम्हारी है, ये तुम्हारे हृदय के अंदर जो भी थोड़े बहुत बचे हुए अनर्थ हैं, कलमश हैं, उनको नष्ट कर देगी और अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। और ऐसे ही हुआ। फिर उस जन्म तो उस बच्चे ने कटाया भगवान का चिंतन मनन करते हुए, और फिर अगले जन्म में वो नारद जी बने और उस समय उनका शरीर बिल्कुल आध्यात्मिक था। ऐसे शुद्ध भक्ति की अवस्था में वो सारे जगह भ्रमण करते रहते हैं और जाके भगवान का भी दर्शन करते हैं, जब चाहे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। पिछले जन्म में ऐसे नहीं हुआ था, बेचारे बहुत तड़प रहे थे दर्शन के लिए, नहीं मिला भगवान का दर्शन उस पहले दर्शन के बाद। परंतु अब जब नारद जी बने हैं, देव दर्शन है, जब चाहे तब जाके भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये है नारद जी। तो नारद जी की निंदा हम कैसे कर सकते हैं? हम दो चार दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अनेक लोग नारद जी के स्थान को नहीं जानते हैं। नारद जी कितने महान हैं, कितने बड़े शुद्ध भक्त हैं, भगवान के कितने निकट हैं, ऐसे लोग नहीं जानते हैं। और चूंकि नारद जी की महानता को नहीं जानते, इसलिए नारद जी के कार्यों की निंदा करते हैं। वही बात जो कि श्री कृष्ण के साथ है। अनेक ऐसे लोग हैं जो कृष्ण तत्व नहीं जानते, भगवान को नहीं जानने के कारण वो भगवान की लीलाओं की कड़ी निंदा करते हैं, तरह तरह के अपशब्द प्रयोग करते हैं भगवान के लिए। और ये क्यों है? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि श्री कृष्ण है कौन। श्री कृष्ण कितने महान हैं, उनका स्थान क्या है, इसलिए हमने इतने विस्तार में अद्भुत कर्मणा शब्द की का वर्णन किया, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि श्री कृष्ण कौन है, कितने महान हैं। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि दुनिया में लोग कहते हैं भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, परंतु कितने महान हैं? यदि इसका अनुमान लगाना है तो हम श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं। केवल सृष्टि की रचना करना, ये केवल इससे भगवान की महानता को जाना नहीं जा सकता। सृष्टि की रचना करना, पालन करना, संहार करना, ये तो भगवान की शक्ति का बहुत ही कम मात्रा में प्राकट्य है। भगवान की शक्ति तो अपार है। तो खैर, क्योंकि लोग कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए कृष्ण लीला की निंदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से लोग नारद जी की महानता को नहीं जानते, नारद जी कितने बड़े भक्त हैं वो नहीं जानते, इसलिए नारद जी के कार्यकलापों को भी नहीं समझते हैं। और नारद जी जब ऐसे कोई काम करते हैं, जिसका वर्णन अब थोड़े समय में करेंगे, शायद अगली बार करेंगे, तो लोग कहते हैं कि अरे देखो, जाके सब जगह ये उकसाते हैं, भड़काते हैं लोगों को, झगड़ा पैदा करते हैं लोगों के बीच में। लेकिन नारद जी कौन है और वो ऐसा क्यों करते हैं वो नहीं जानते हैं। तो ये दूसरा अर्थ है देव दर्शन का, तीसरा शब्द है। और एक अर्थ ये है कि नारद जी क्योंकि भगवान के इतने निकट हैं, इतने शुद्ध भक्त हैं, नारद जी का दर्शन करना अर्थात भगवान का दर्शन करना, नारद जी भगवान के बराबर हैं, इसलिए यहां भी उनको भगवान कह के संबोधित किया गया है। यद्यपि वो परम सत्य भगवान नहीं है, परंतु कभी कभी शास्त्रों में भगवान शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में भी किया जाता है जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। नारद मुनि के अंदर भक्ति की शक्ति है, इसलिए उनको भगवान कहा गया है, भगवान नारदो देव दर्शनः। तो भगवान श्री नारद जी का दर्शन करना अर्थात साक्षात भगवान के दर्शन करने के समान हो जाता है। देव शब्द का अर्थ यह भी है जो स्वर्ग लोक आदि में देवतागण रहते हैं, तो नारद जी को देव ऋषि भी कहते हैं, देवर्षि नारद। तो नारद जी का दर्शन करना अर्थात समस्त देवताओं का दर्शन करने के बराबर है। तो आचार्यों ने इस तरह से देव दर्शन शब्द की व्याख्या की है। तो इससे ये अब 16वें श्लोक की चर्चा अब हम समाप्त कर रहे हैं और अब समय हो चुका है। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि नारद जी ने आगे चल के कंस से क्या कहा, किस तरह से कंस को भड़काया, कंस किस तरह से भड़क गया और भड़कने के बाद कंस ने क्या किया, तो फिर आपको कल शाम यहां आना होगा। हरे कृष्णा। तो यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट अभी तक हैं। क्या श्री कृष्ण परव्योम मथुरा में जन्म लेते हैं? नहीं, वो जन्म की लीलाएं तो वहां नहीं होती हैं, ये यहां पर होती हैं भौम मथुरा में। क्या शिव जी सर्वव्यापी हैं जैसे कि परमात्मा हैं? ये तत्व, शिव तत्व समझना बहुत मुश्किल है। ऐसे अनेक तत्व हैं, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है, जो कि अचिंत्य है। उनमें से एक तत्व है शिव तत्व। इसलिए शिव जी कितने महान हैं और इस किस तरह से वो कार्य करते हैं जगत में, इसको समझना मुश्किल है। शास्त्र में ऐसे कभी कभी संबोधन किया जाता है उनको कि आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वव्यापी हैं, परंतु किस तरह से हैं इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। केवल इतना तो कह सकते हैं कि भगवान का स्तर उनका नहीं है। तो जिस तरह से भगवान सर्वव्यापी होकर सब कुछ कर सकते हैं, उस मात्रा में शिव जी नहीं कर सकते, परंतु अवश्य काफी करीब हैं भगवान के। वो उनके गुण इतने अधिक हैं। दूसरा प्रश्न है, कि ऐसा क्यों है कि केवल चौथा जो गुण है रूप माधुरी, वो एक अधिक गुण माना जाता है? क्योंकि सौंदर्य ये विष्णु शिव में भी है, परंतु पूर्णता में श्री कृष्ण में विद्यमान है। नहीं, केवल रूप माधुरी नहीं, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, ये चारों प्रकार के मधुर गुण श्री कृष्ण में हैं, जो कि नारायण भगवान में भी नहीं है। जैसे रूप, जैसे आपने ही बताया है कि भगवान नारायण भी अति सुंदर हैं, शिव जी भी दिखने में बहुत सुंदर हैं, देवलोक के निवासी भी दिखने में बहुत सुंदर हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य अतुलनीय है। इसके सामने और कोई नहीं आ सकता है। इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष गुण है। तो अब आरती का समय हो गया, अब कीर्तन करेंगे और कल शाम पुनः मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।